मुरली पे माया मोती बोला है या नहीं बोला है? बोला। बच्चे जब नाराज होते हैं ना तो भाग जाते हैं घर छोड़ के, और उनको ढूंढा जाता है, ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मौसी के। तो बाप के बच्चे यहाँ भी हैं, कारण या कारण उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है तो माया मौसी की शरण लिए बैठे हैं। आप समझ में आया क्या? राज समझ में आ गया कि एडवांस पार्टी में कौन से वंश की आत्माएं हैं? है सब सूर्य वंश की आत्माएं, लेकिन दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। क्या कोई सूर्यवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है? पक्का सूर्यवंशी है। कोई पे चंद्रवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई पे बौद्धवंशी, कोई पे इस्लामवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है। तो जो भी रुद्रमाला के मण के हैं उन पे जो दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, वो कैसे उतरेगा? बाप तो बोलते हैं ये मेरे बच्चे हैं, साक्षात रुद्र के बच्चे हैं, तो रुद्र शंकर को कहा जाता है क्योंकि मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर धारण करते हैं तो नाम बदल जाता है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो शिव ने प्रवेश किया, ब्रह्मा के उसने पाठ बजाया, फिर वो शरीर बदल दिया। जिस किसी में भी प्रवेश करते हैं, जिस ब्राह्मण बच्चे में, उसका नाम शंकर पड़ता है। क्यों शंकर नाम पड़ता है? शंकर माना मित्र, क्योंकि शिव की सोल भी उसमें काम करती है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी उसमें चंद्रमा के रूप में मस्तक में प्रवेश करके कार्य करता है, और राम वाली आत्मा का वो अपना शरीर है ही है। तो एक ही शरीर में तीन आत्मा, इसलिए वो नाम शंकर पड़ा। तो शंकर और शिव को मिलाई देते हैं। क्यों मिलाई देते? शिव ब्रह्मा को क्यों नहीं मिलाते? शिव विष्णु को क्यों नहीं मिलाते? शिव को 33 करोड़ देवताओं के साथ क्यों नहीं मिलाते? कोई कारण होगा? क्या कारण होगा? जो भी बाप के बच्चे हैं उन बच्चों में डायरेक्ट जो भी बच्चे हैं उनमें तीन देवताएं सबसे पहले, उन तीन देवताओं के बाद साथ आता है, सिर्फ अकेला नहीं आता। तो जब अकेला नहीं आता है और तीन के साथ आता है तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक मूर्ति शिव नहीं, दो मूर्ति भी नहीं, त्रिमूर्ति शिव। और कैसे भी है, शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो अभी कितनी मूर्ति का काम हुआ? मूर्ति माना साकार, अमूर्त माना निराकार। मूर्त माना, मूर्त माना साकार जिसकी मूर्ति हो, अमूर्त माना जिसकी मूर्ति ना हो। तो कितनी मूर्तियों का भी पार्ट प्रत्यक्ष हुआ? दो मूर्तियों का पार्ट। उसमें भी जो अभी भी ब्रह्मा को ही सब कुछ मानते हैं, ब्रह्मा को ही गीता ज्ञान दाता मानते हैं साकार में। उनकी बुद्धि में सिर्फ एक मूर्ति प्रत्यक्ष हुई, कौन सी मूर्ति? ब्रह्मा की मूर्ति। और वो सूर्यवंशी बच्चे है जो राम वाली आत्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही यज्ञ छोड़कर चले गए थे और अभी फिर यज्ञ में आ गए। वो एडवांस पार्टी में आने वाले बच्चे, क्योंकि उनके लिए मुरली में बोल दिया, जो एक बार ब्राह्मण बन जाता है वो भले शरीर छोड़ जाए तो भी वो ब्राह्मणत्व का जो गुण है और संस्कार है वो अगले जन्म में ले जाते, तो वो आत्मा पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के दोबारा यज्ञ में आती तो लास्ट सो फास्ट चल जाती। इतनी फास्ट जाती है कि वो दूसरी मूर्ति को तुरंत पहचान लेती क्या तुरंत। इसलिए मुरली में बोला है जो तुम्हारे कुल का होगा तो थोड़ा सा ज्ञान सुना देंगे फट से पकड़ लेगा, तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो तुम बार बार उसको सुनाते रहो वो नहीं मानेगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकालते रहे, या तो सुनेगा ही कहेगा दीदी दादियां दादाएं जब मानेंगे तब हम तुम्हारी बात। ऐसा क्यों कहते? इसलिए कहते हैं कि बाबा ने बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, क्या इस्लाम धर्म का होगा तो इस्लाम धर्म का मुखिया जो भी ब्राह्मणों में होगा उसी की बात मानेगा, क्रिश्चियन धर्म का होगा तो क्रिश्चियन धर्म का जो मुखिया होगा जब वो मानेगा तब उससे फॉलोअर्स भी मानेगा, वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो किसी की बात सुनते हैं। तो वो गुणधर्म यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। बाकी जो ज्ञान सूर्य के कुल के होंगे उनकी निशानी बता दी क्या, थोड़ा भी तुम उनको ज्ञान सुनावेंगे एडवांस नॉलेज सुनावेंगे वो फट से मान लेंगे और उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा, चल पड़ेगी ज्यादा तंग दुखी नहीं करेंगे। एक बच्चे वो होते हैं जो तो बड़े आराम से पैदा होते हैं, अपमान को दुख नहीं देते, बाप को परेशानी में नहीं डालते कि हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेशन कराना पड़े। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो शिशु टेंडर की तरह होते हैं, शिशु जब पैदा होता है ना तो अपनी माँ का पेट फाड़ के पैदा होता है। आज की दुनिया में भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि आराम से पैदा नहीं होते, हॉस्पिटल में जाके उनका पेट फाड़ना पड़ता है तब पैदा होते हैं। और सतयुग में बच्चे कहता कैसे पैदा होते थे, दुख देकर के पैदा होते थे या आराम से पैदा होते थे, गर्भ महल कहा जाता था। तो आज की दुनिया में भी ये सब कुछ देखा जा रहा है और इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में अभी हो रही है। जो ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे सूर्यवंशी पक्के होंगे वो बड़े आराम से इस ज्ञान को स्वीकार कर रहे होंगे, कोई हिला हवाला नहीं करेंगे, और जो नहीं होंगे वो बहुत तरह करेंगे। तो बाप कहते हैं जो प्यासा हो उसको पानी पिलाओ, जिसको प्यास भी नहीं लगी है उसको जबरदस्ती बार बार पिलाने की क्या दरकार है, जो भूखा हो उसको भोजन खिलाओ, जो भूखा ही नहीं है और तुम उसे भोजन देते जाओ तो वो तो उल्टी कर देगा। बाबा बोलते हैं उस बात को पकड़ ले रखी क्या, और हमें परवाह इस बात की, बाबा ने तो हमको सबको वरदान दे दिया है, एडवांस पार्टी वालों को क्या वरदान दे दिया है, कि तुम्हारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर निकलेगा एडवर्स में तो पूरे के पूरे परिवार को इस ज्ञान में आना पड़ेगा। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए, आप इतने निकल चुके हैं तो उनके सारे के सारे परिवार अगर इस एडवांस नॉलेज में आ जाएंगे तो 4.5 लाख तो हो ही जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो तंग तो नहीं होना चाहिए। बाकी ये है, माताओं को वो ज्यादा लगा रहता है अपने बच्चों अपने घर परिवार वालों के प्रति, तो कहते हैं नहीं कल नहीं आज ही निकलना है, कल पता नहीं कहीं विनाश हो जाए, कहीं लेट हो जाए, टू लेट का बोर्ड लग जाए, तो फिर क्या फायदा। सोचते हैं टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो प्रजावर्ग में जाना पड़ेगा, प्रजा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करती। तो बाप कहते हैं जो ज्यादा पीछे पड़ते हैं ना ज्ञान सुनाने के लिए वो फिर मुसलमान धर्म में चले जाते। मुसलमान जो होते हैं ना वो बहुत जबरदस्ती करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण से अभी अभी मुसलमान बन जाओ नहीं हम तुम्हारा सर काट देते हैं। बाप कहते हैं हमारा सहज मार्ग है, हमारा कठिन मार्ग नहीं है, जो भी परिवर्तन करना है सहज सहज परिवर्तन करना है, घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का क्लेश पैदा नहीं होने देना। इसलिए बता दिया कि लौकिक और अलौकिक दोनों में तोड़ निभानी है। ऐसे नहीं कि ज्ञान मिल गया है तो कोई माताएं इतने उन्होंने उत्साह में आ जाती है कि घर में जाकर के जो भी चित्र वगैरह रखे हुए हैं दूसरे देवताओं के वो सब फट फेंक दिया। ये सब अंधश्रद्धा है, माना जबरदस्ती इस ज्ञान में चलना पड़ेगा जिस ज्ञान में हम चलते हैं। बाबा ने तो बोला हुआ है कोई को भक्ति करने से मना नहीं करना है, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको भक्ति करने के लिए और सहयोग दे दो, जबरदस्ती उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती कन्वर्ट करने वालों के ऊपर मुसलमान धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, जोर जबरदस्ती क्यों करना, हमें पढ़ाने वाला कौन है, बाप आया हुआ 70 साल से बोलता आया बच्चे मुझे याद करो, माँ में कम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो, और 70 साल में भी बच्चे अभी क्या कर रहे हैं है? दूसरों को भी याद करते हैं, बाबा को भी याद करते हैं, माने विचारी याद छोड़ते नहीं। तो बाप को क्रोध आता है, अभी तक भी नहीं आ रहा है, अब आगे देखी जाएगी, अभी तक की बात बताई, अभी भी बाप के स्नेह का रूप चल रहा है, और बाप तो प्यार का सागर ही रहेगा। हाँ ये बोल दिया मेरे साथ धर्मराज भी है, ये नहीं बोला मैं धर्मराज हूँ, अगर वो खुद ही धर्मराज बन जाए तो प्यार का सागर नहीं कहा जाएगा, तो बाप तो प्यार का ही सागर है, प्यार का सागर कभी मार नहीं मारेगा। 70 साल में अभी तक मार नहीं मारी तो आगे क्यों मारेगा, बाप तो प्यार ही करेगा। लेकिन जो धर्मराज का पार्ट है वो किसका है, धर्मराज मेरे साथ है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। छिलका चढ़ा हुआ है ना दूसरे धर्म का, दूसरे दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है वैसा खाद खींच के रख दूंगा। छिलका कहो खाद कहो, धर्मराज के झंडे तो प्रसिद्ध हैं। तो धर्मराज का पाठ किसका है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा गरीब छोड़ दिया, निश्चित हो जाओ क्या? शंकर का पाठ, अरे शंकर का पाठ वो जगत पिता भी है और वो धर्मराज भी है, है? उसमें जो चंद्रमा है उसने जो बहुत प्यार दिया है, तो जो प्यार ही प्यार दिया है और बच्चों ने उसको दुखी ही दुख दिया है, यह है कि नहीं? जो आकताई बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा को दुखी ही दुख दिया और ब्रह्मा ने उनको सुखी ही सुख दिया। ब्रह्मा बाबा ने गांठ बांध के रख ली कि बच्चों के भाव स्वभाव को मुझे नहीं देखना है, बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं इन्हें करने दो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं अपने को देखना, दूसरे को नहीं देखना। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की जड़। तो बच्चों का इतना सहन किया सारा जीवन तो वो हिसाब किताब का पूरा होगा, अरे वो हिसाब किताब तो पूरा होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा ने सहन कर लिया तो बस हो गया हिसाब किताब पूरा, नहीं। बाहर की दुनिया में जब ज्ञान नहीं होता तब जो सहन करते हैं या सहन कराते हैं तो उनका एक गुना हिसाब बनता है, और यहाँ ज्ञान में आने के बाद 100 गुना हिसाब बनता है। प्राप्ति भी 100 गुनी तो घाटा भी 100 गुना। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को जिन्होंने दुख दिया है अथवा ब्रह्मा सरस्वती जैसी पालो करने वाली आत्माओं को दुख दिया है तो वो हिसाब किताब आगे चल के पूरा नहीं होगा, वो 100 गुना बोझ चढ़ चुका। इसलिए अभी टाइम पकने जा रहा है, दूसरी मूर्ति का पाठ पूरा हुआ और तीसरी मूर्ति का पाठ शुरू होने जा रहा है। तीसरी मूर्ति का पाठ शुरू होना माना स्थापना का कार्य प्रैक्टिकल में आ जाए, और जब स्थापना होगी एक तरफ तो स्थापना के नजारे जो देखेंगे वो जय जयकार करेंगे, और स्थापना के साथ साथ क्या होगा? विनाश भी होगा। किसका विनाश होगा? सुखदाइयों का विनाश होगा या सुखदाइयों का विनाश होगा? यज्ञ में रह करके जिन्होंने दुख देने का काम किया उन दुखदाइयों के लिए वो ब्रह्मा की सोल भले शरीर छोड़ गई है और भले अभी बाप के रूप में प्रवेश करके अभी भी आदनारीश्वर के रूप में माँ का प्यार दे रही है, लेकिन आगे चल करके जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होकर के महाकाली का पाठ बजाएगी और असुर संहार जी का पाठ धर्मराज के रूप में सामने आ गया है। ब्रह्मा धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा की सोच धारणाओं का राजा है, तो वो धारणाओं का राजा ऐसे नहीं कि सुखी ही सुख देता है, पर दूसरे रूप में वो मार भी मारेगा और ऐसी मार मारेगा कि कोई भी बच्चा सुधरे बगैर नहीं बची
ओम जी
माता
जी पूछना
पड़ेगा।
हाँ माता जी पूछ रही है कि अमित वाणी में बोला है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ये कैसे? ये पूछ रहे ना, छोड़ना पड़ेगा और ताला भी नहीं लगाने देंगे, इतनी इमरजेंसी होगी। अच्छा कोई का वारंट निकलता है तब क्या होता है? वारंट निकलता है अचानक और पुलिस आने वाली होती है, पता लग जाता है तब क्या करते हैं? ताले वाले लगाते हैं, है? भागते हैं ना, जान बचाने के। तो माता जी पूछ रही है कैसे होगा, है?
जान बचाने को पड़ेगी।
हाँ जी
अच्छा बन जाएगी वो उसको भी ऐसा
ऐसा है पड़ेगा। अब अवस्था जो बननी है वो ज्ञानियों की बननी है या अज्ञानियों की बननी है? ज्ञानियों की अवस्था बनेगी। और बेसिक नॉलेज में अज्ञानी है कि ज्ञानी है? दूसरे धर्म की आत्माएं होती है वो जमीन खोद करके कब्र में गाड़ी जाती है। दूसरे धर्म की जीव आत्मा होती है कहीं छोड़ती है तो कब्र में गाड़ दिया जाता है। और हिंदुओं में जला दिया जाता है। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता होगा? कैसे? वो देवान को जलाते नहीं है, देवान को मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी माने देह अभिमान की मिट्टी में, देवान को देह अभिमान की मिट्टी में गाड़ देते हैं। फिर वो देवान दोबारा पैदा होगा कि नहीं होगा? जरूर पैदा होगा। और जला दिया जाए तो खत्म हो जाए। तो अभी जो ज्ञान और योग की भट्टी में अपने देवान को जला रहे हैं वो तो आत्मा बनकर के शुद्ध चरती कला में जा रहे हैं। और जो अपने देवान का पोषण कर रहे हैं वो गिरती कला में जा रहे हैं। तो मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो एडवांस पार्टी का मधुबन हो और चाहे वो बेसिक वालों का मधुबन हो। क्यों? क्योंकि कहते हैं प्रभुता पाय काहि मद नाही। किसी को कुर्सी मिल जाती है, प्रभुता मिल जाती है तो उसको अहंकार जरूर आता है। तो चाहे बेसिक नॉलेज में हो चाहे एडवांस नॉलेज में हो, अगर अधिकार की कुर्सी पर बैठे हुए और अधिकारी के बनकर के अधिकार चला रहे हैं, राजा बनकर के सेवा ले रहे हैं, अपन को सेवादारी नहीं समझते हैं तो बाबा ने बोला हुआ है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उनको अपना अहंकार त्यागना ना पड़ेगा।
सेवा तो करते हैं,
लेकिन अगर अहंकार में आके सेवा करें, अधिकार में आकर के सेवा करें, तो वो सेवा सेवा नहीं रह जाती। कोई भी ईश्वरीय सेवा हो, अगर उसमें स्वार्थ भरा हुआ है, तो उस सेवा का कोई फल नहीं। जो भी ईश्वरीय सेवा की जाए, निस्वार्थ होनी चाहिए। किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए ईश्वरीय सेवा में। इस जन्म में हमको प्राप्ति हो जाए कुछ, हम सब सेवाधारी हैं। बाप ही सेवाधारी है, तो हम बच्चे भी सेवाधारी हैं। हम कोई तो हुक्म चलाने वाले नहीं। अगर हुक्म चलाने वाले हैं, तो समझ लो यही राजा ही भोग रहे हैं। और यहाँ राजा ही भोग रहे हैं, तो वहाँ राजा ही चक्त हो जाएगा। वहाँ दास दासी बन के रहना पड़ेगा। इसलिए भाव अंदर की होना चाहिए, क्योंकि सेवाधारी का जो कर्म होता है वो बहुत कठोर कर्म होता है। सेवा की सेवा भी करे और जिसकी सेवा करे उसकी बात भी सुने। परिवारों में जो नौकर चाकर होते हैं ना सेवाधारी, तो जो बड़े होते हैं, कोई कोई बड़े खोचड़ होते हैं, वो कितना भी अच्छा काम करेंगे, उनको कुछ न कुछ सुनाते ही रहेंगे, तो उनकी बातें भी सुनते हैं और सेवा भी करते हैं, या कि गालियां देके भाग जाते हैं, सुन लेते हैं ना। तो सेवा का धर्म बहुत कठोर धर्म है, बड़े प्यार से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं? हम तो ईश्वर का बच्चा समझ करके इनकी सेवा कर रहे हैं। ये बच्चा बुद्धि है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको गोद में ले लो तो नाक नोच लेगा, बाल पकड़ लेगा, आंख में उंगली डाल देगा। तो समझ लेना चाहिए, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी हमें सेवा भी करनी है और इनकी बातें भी सुननी है। अगर ये मार पिटाई भी करते, जैसे कि एडवांस वालों में बहुतों की मार पिटाई होती थी, सेवा करने जाते हैं तो उनकी कुटाई पिटाई भी करने के, तो क्या समझना चाहिए? ये भगवान के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो सेवाधारी। हमारा बाप खुद ही सेवाधारी बनकर के आया हुआ है, तो सेवाधारी के बच्चे हम भी सेवाधारी। ऐसी आत्माओं को बल गीता पाठशाला चला रही है, क्योंकि गीता पाठशाला में टीचर्स कौन होते हैं? सन्यासी टीचर्स होते हैं या गृहस्थी टीचर्स होते हैं? गीता पाठशाला है तो उसमें सन्यासी टीचर नहीं होना चाहिए। जैसा पढ़ाने वाला होगा वैसा पढ़ने वाले बने। पढ़ाने वाला गृहस्थी है तो पढ़ने वाले बच्चे भी गृहस्थी। पढ़ाने वाला लक्ष्मी नारायण का टेम्पल बनकर के दिखाना चाहता है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन। तो जो निमित्त टीचर्स है गीता पाठशाला में, वो भी क्या हुए? लक्ष्मी नारायण जैसे टेम्पल बनने के प्रयासधारी होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनाना है, और अपने घर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसा वातावरण बनाना है। ऐसे नहीं कि हम रहते इस घर में हैं और अलग दूसरा घर कोई बना दिया, उसमें जाके क्लास कराए आते हैं, तो अपने घर का वातावरण नहीं सुधरेगा। अपने घर को ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए, अपने घर में ही वो पवित्रता का वातावरण बना करके रखे। अगर हम खुद पवित्रता का वातावरण नहीं बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बनाएंगे, तो जैसे भक्ति मार्ग में समझा जाता है कि जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई अपवित्रता करते हैं कोई पुजारी लोग, तो बहुत पाप माना जाता है। ऐसे यहाँ भी अंदर में आना चाहिए कि हम अपनी गीता पाठशाला को हमारे हम अपने घर को क्या बनावे, मंदिर बना, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना करके दिखाए, ताकि आने वाले जिज्ञासु के ऊपर भी असर पड़े और चारों तरफ का वायुमंडल भी शुद्ध बने। तो हम तो इस प्रयास में रहे, लेकिन दुनिया जो है वो तो हमारी बातों को नहीं समझती है। क्यों नहीं समझती है? जब हम इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, इतना श्रेष्ठ लक्ष्य है, तो समझती क्यों नहीं है? क्योंकि हम जितना ही ऊंचा लक्ष्य लेते हैं, उतना ही माया हमारा अपोजिशन करती है। हम इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और माया हमको दबोचना चाहती है, तो जब आखिरी बाजी होगी तो माया अपनी पूरी ताकत लगाएगी या थोड़ी ताकत लगाएगी? जब फाइनल परीक्षा होगी ना, तो माया और प्रकृति ये दोनों ही रावण के सरों के रूप में बैठे हुए हैं। पांच विकार पुरुष के, माया रावण, और पांच विकार स्त्री के, प्रकृति, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश देवता। पहले राक्षस होते हैं, फिर बाद में देवता बन जाते हैं। तो प्रकृति भी भयंकर रूप धारण करेगी और माया भी भयंकर रूप धारण करेगी। इतना भयंकर रूप धारण करेगी कि एडवांस पार्टी में जो भी जिस धर्म के बीज है, दूसरे दूसरे धर्मों के बीज, वो सारे ही बीज जाकर के बेसिक नारी जवानों में मिल जाएगी। क्या जो आर्य समाजियों के बीज है वो आर्य समाजियों से मिल जाएंगे, बौद्धियों के बीज है वो बौद्धियों से मिल जाएंगे बेसिक नारी में, और इस्लामियों के बीज इस्लामियों से मिलकर के कार्य करेंगे, और क्रिश्चियंस के बीज जो बेसिक नारी में क्रिश्चियंस है उनसे मिलकर के कार्य करेंगे। बचे सूर्यवंशी, कौन बचेंगे? सूर्यवंशी। तो उनके लिए बोला हुआ है, सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं भूलना। क्या? सारी दुनिया में माने एडवांस वाले भी जो दूसरे दूसरे धर्म के छिलके चढ़ाए हुए हैं वो भी दुश्मन बनेगा। जैसे कि सना छानवे में कंपिल में हड़कंप मचाया, कौन से धर्म वालों? आर्य समाजियों। उन्होंने एडवांस की सारी पुस्तकें छपाई थी, जैसे आर्य समाजी लिटरेचर बहुत छपाते हैं, और सारी पुस्तकें छपाने के बावजूद भी 98 में जबरदस्त विरोध किया, और किससे मिल गए? बेसिक नारी वालों से जाकर मिल गए। बेसिक नारी वाले 76 से लेकर के और 98 तक कभी भी कुछ भी एडवांस पार्टी का नहीं बिगाड़ सके। कब बिगाड़ सके? जब एडवांस पार्टी की आत्माएं बेसिक नारी वालों से जाकर मिल गई, जो आर्य समाधि की आत्माएं थी एडवांस में, वो जाकर के उन बेसिक वालों के लिए, तो हमला सफल हो गया। माना बाहर से इतना खतरा नहीं है, बड़ा खतरा अंदर वालों, क्योंकि अंदर वाले जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, उनको ज्ञान के सारे राज मालूम है, और बेसिक वालों को ज्ञान के राजों का पता नहीं।
जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण मतलब जो परिवार में चला है उसका पूरा परिवार चलेगा, लेकिन यदि परिवार के लोग नीचे धर्म वाले होंगे तो फिर वो एडवांस के नॉलेज को समझे।
आपने कैसे, अभी ज्ञान में भी नहीं आया, आपने दूसरे धर्म का कैसे बता दिया?
उनके विचार चार कलम है,
कमाल है, आपकी गीता पाठशाला में रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, और आपने उनको दूसरे धर्म का बना दिया। रैम करो,
मान लीजिए वो खाते भी नहीं है, अभी बहुत साफ रहते हैं, नहीं खा रहे हैं।
खाया तो कभी खाया है, खून किसका है? अभी भी संशय है, माने बाबा के महावाक्यों में ही संशय है। अच्छा बात अभी दूसरी चल रही है, तो जो आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म की है एडवांस में, और बेसिक नॉलेज में जाकर के अपने अपने ग्रुप को सहयोग देंगी, और उनको सारी नॉलेज जाके एडवांस की सुनाएंगी। क्या एडवांस की जो भी नॉलेज ली हुई है वो सारी नॉलेज इधर की उधर सुनाएंगी, और सूर्यवंशियों के विरोधी बन जाएंगी। क्या सूर्यवंशियों की विरोधी बनेगी, तो सूर्यवंशी ग्रुप तो बहुत थोड़ा रह गया, एडवांस में भी छटनी हो गई ना है, तो छटनी हो जाने के बाद पांच पांडव जैसे बचे, और बाकी सब अपने अपने ग्रुप में जाके कन्वर्ट हो गए। लेकिन कुछ भी हो, भगवान बाप किसकी तरफ है? पांडवों की तरफ रहेगा ना, तो विजय किसकी होगी? पांडवों की विजय होगी। अरे सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है, सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता, तो अंत में जब प्रत्यक्षता होगी तो ये सब हार खा जाएंगे। चलिए रेडियो वालों का भी सहयोग लेंगे, तो चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उस प्रेशर के बीच में फिर परीक्षा होगी, जो हुआ एक मिनट लगता, ऐसी कड़क परीक्षा के बीच मारा के मर के प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कौन अव्वल नंबर, कौन द्वयम नंबर, कौन 108वां नंबर, कोई तो तरीका होगा। जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो बाप तो बहुत रमतू रमज रहा है, सबसे पहले जब परम नाम बनेगा माउंट आबू में तो वहां पहले पहले कौन पहुंचेगा? अरे माउंट आबू जब परम धाम बनेगा तो बच्चे परम धाम को भी धरती पर उतार लेंगे, बोला कि नहीं? तो बनेगा तो पहले पहले कौन पहुंचेगा? बाप और बाप के सूर्यवंशी बच्चे, और बाद में सब نمبر بار کیوں پہنچیں گے؟ اس لیے پہنچیں گے کہ دنیا ان کو جینے نہیں دے گی. کیا؟ دنیا ان کو جینے نہیں دے گی اور دنیا میں رہنے بھی نہیں دے گی. تو پہلی ٹرین جو نکل گئی سو نکل گئی اور بعد والی ٹرینیں سب پاک ڈالی گئی. جس کو جہاں سر چھپانے کی جگہ ملی وہاں باغ کھڑا ہوا. نہ کوئی نے یہ دیکھا کہ ہماری لڑکی کہاں ہے, ہماری پتر ودھو کہاں ہے, ہماری گھر والی کہاں ہے, بس باغ کھڑے ہوئے. سب سے پہلے تو اپنی جان کی آئی ہوتی ہے کہ پتنی پیاری ہوتی ہے اور بچی پیاری ہوتی ہے یا بہن پیاری ہوتی ہے؟ اپنے سے پہلے پیار, اپنے شریر سے پہلے پیار ہوتا ہے. ایسا جو آج میں ہوا وہ انت میں بھی ہوگا. بلاوا آئے گا, رنگ کال آئے گا, آ جاؤ. اب دنیا میں کہیں ٹھکانا بھی نہیں. ایک بات دوسرا نہ کوئی ٹھکانا نظر آئے گا تو کہاں جانے گی؟ باپ کے پاس جانے گی. اور باپ تو وہاں تبھی پہنچے گا جب مدھون والے مدھون چھوڑ کے بھاگ جائے اور گیان سروور والے گیان سروور چھوڑ کے بھاگ جائے. ضرور باہر سے نکلیں گے اور وہاں سے آڈر نکلے گا. گیتا کا بھگوان ثابت ہوگا. گیتا کا بھگوان میرا آکاش شیو شنکر بھولے ناتھ ہے یا دادا لیسراج کرشن برہما کون ہے؟ جب ایک بات ثابت ہوگی تو سچا گیتا کلیئر ہو جائے. آئے ہوں ایویل سول پریشان کیوں کرتی ہے؟ کوئی ایویل کام کرتے ہیں تو ایویل سول پریشان کرتی ہے. اگر ہم ایویل کام ہی نہیں کریں گے, ہم باپ کی یاد میں رہیں گے, ایک باپ دوسرا نہ کوئی, تو ایویل سول ہمارے پاس آ نہیں سکتی.
ماؤنٹ
آبو
آیا ہے
ماؤنٹ آبو. ہاں کمپنی میں ڈھیر ساری آتمائیں آتی ہیں.
وہ ابھی آتا ہے گیتا پاٹھ شالا میں, پریشان کرتا ہے
تو گیتا پاٹھ شالا میں وائبریشن کچھ بگڑتا ہوگا تبھی آتا ہوگا. کوئی بھی سول ہے آخر وہ آتما ہے نا, منشیہ آتما ہی تو ہے. تو بابا تو سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتے ہیں کوئی بھی سول آتی ہے, بھی سول آتی ہے, کوئی کو بیماری ہوتی ہے تو جاؤ اولیے کے پاس, جاؤ ڈاکٹر کے پاس, اس میں کیا کروں گا؟ ارے بیماری آتی ہے وہ بھی اپنا کرم بندھن. بابا نے تو نہیں کہا کہ آشرم ہے, بابا نے دیے اور بولا ہے کہ جو بھی ایمیل سول ہے ان کا ادھار تم بچوں کے دوارا ہوگا. پریشان کوئی ہمیں اتنا ہی کرے گا جتنا ہم نے اسے پریشان کیا ہوگا. جب اب وہ جب بند کر دو گے دوبارہ پھر آ جائے گا تب اسے آنے کا کوئی ٹائم مقرر ہے کیا؟
وہ کلاس نہیں کرتا.
ہاں تو धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते उस आत्मा की भी संगति हो जाएगी, वो याद में रहेगी तो हो सकता है बाप की दृष्टि मिल जाए। अगर ज्यादा ही तंग होते हैं तो औलिया के पास जाकर के उसका निवारण कर
दो,
वो उसके जाने की जरूरत नहीं। वो जो औलिया होते हैं वो बैठे ही बैठे दूसरा दूसरे भूत प्रेत मिला हुआ है, हम क्यों जाए। भूतनाथ की शक्ति अगर हमारे अंदर है, हम बाप की याद में रहते हैं और बाप हमारे साथ है तो हमें क्या परवाह पड़ी है। तुम बच्चे जितना मेरी याद में रहते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमारी दृष्टि जब उसमें दिखाई पड़ेगी कि इसमें इसमें तो भूतनाथ बैठा हुआ है वो तो अपने आप भाग जाए।
चलो तुमको लेने आए हैं लेकिन मेरी हिम्मत नहीं करती है, तुम्हारे पास इतना बड़ा पावर है जो हम नहीं आ सकते।
अपना स्वाभिमान भी तो होना चाहिए।
संकट की सच है विष्णु बारे में कहा जाता है कि विष्णु चार भुजम संगम है, उसकी सतर्कता कैसी होगी।
सारी दुनिया में न्यूट्रल रहने वाली आत्माएं है कि नहीं, न्यूट्रल माने न ज्यादा लवफुल न ज्यादा लाभफुल, लाभ और लव दोनों में बैलेंस रहने वाली दुनिया में कोई आत्माएं होगी या नहीं होगी। जल्दी जवाब दो, होगी। तो उनमें जो फर्स्ट क्लास आत्मा होगी 100% पास होने वाली वो ही आत्मा विष्णु करूँ
होगी,
साकार में होगी भाई। हम तो साकार की ही बात कर रहे हैं कि ये न्यूट्रल रहने वाली आत्माएं कुछ होंगी कि नहीं दुनिया
में। संगम होगी,
संगम में,
संगम में
हर बात का फाउंडेशन संगम में पड़ता है। नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग का वर्ता देता हूँ, क्या जिसका सैंपल सिंध हैदराबाद में बना के दिखाया, कराची में वहां छोटा सा सैंपल बना के दिखा दिया, खून की नदियां बह रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और वही एक बंगले में 300-400 आराम से नहीं पड़े थे तो सैंपल बन गया ना। अरे नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का सैंपल बना, अरे न हा न हूँ बन गया ना। वो आज में हुआ, जो आज में हुआ वो अंत में होगा कि नहीं होगा। आज में छोटा सैंपल के रूप में हुआ और अंत में बड़े रूप में
ओहो।
तीन मूर्तियां हैं और 100 वर्ष का संगम युग है तो उनका टाइम तो बना हुआ है ना, 30-33 साल, 30-33 साल है, ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 30। इतना टाइम तो देंगे कि नहीं देंगे, फिर क्या
है। मोदी ने बोले हैं गुजरात जो होती है
गुजरात
14 बताए तो क्या 14 आत्माओं
के जन्म में नहीं, जो रुद्राक्ष का लड़का होता है वो मुख की तरह होता है, क्या है। और जो रुंड माला होती है विष्णु की माला वो नीचे का धड़ बताया गया, माना वो प्रैक्टिकल काम करने वाला है, अकल चलाने वाला नहीं है। ये इतना हिस्सा जो होता है वो अकल चलाने वाला माना जाता है। तो रुद्राक्ष के मड़के सर है बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, वो बुद्धि बहुत चलाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। तो जो बुद्धि चलाने वाले बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं, उन बुद्धिमान बच्चों में कई कई सोल प्रवेश करती है, कोई में कम और कोई में ज्यादा। वही ब्रह्मा कुमार कुमारियों वाली सोल जो वहां से शरीर छोड़ती है, दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो वहां से शरीर छोड़ करके यहाँ अपने ग्रुप में आकर के प्रवेश कर जाती है। इस्लाम धर्म वाली होगी तो इस्लाम वाले में प्रवेश करेगी, बौद्ध धर्म की होगी तो बौद्ध धर्म वाले में भी प्रवेश करेगी। माने एक एक में 14-14 सोल भी प्रवेश कर जाती है। इसलिए कोई कोई द्राक्ष के मड़के में 14 मुख दिखाई जाते हैं, ऐसी 14 मुख। और कोई मड़का ऐसा भी होता है जिसमें 1-2 मुख होते हैं। एक मुख का मड़का किसी को मिलता नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। क्या एक मुख का माना बाप दादा ही उसमें प्रवेश कर सकता है और दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अब समझ में आ गया? नहीं, वो तो विष्णु की मूर्ति पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र में शिव बाबा क्यों प्रवेश करेगा? पवित्र में शिव प्रवेश करता है क्या? नहीं,
विष्णु का कार्य होगा तो बाबा का
है। जब जब शंकर का कार्य शुरू हुआ तो ब्रह्मा का आना बंद हो गया क्या? नहीं, ब्रह्मा का भी पाठ चालू है, नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहाँ से पैदा होंगे? बाबा तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा भगवान सा बनी है, तो उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म बदन। जब ब्रह्मा ही नहीं तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहाँ से आ गए? तुम भी कहते हो हम ब्रह्मा मुखमन सवली ब्राह्मण है, तो तुम्हारा ब्रह्मा मौजूद है या नहीं है? है ना? कि उड़ गया? तो पहली मूर्ति भी है तुम्हारी, दूसरी मूर्ति भी है, तो ऐसी तीसरी मूर्ति भी चाहिए कि नहीं चाहिए? और तीनों मूर्तियां होंगी, तीनों प्रत्यक्ष होंगी तो बात प्रत्यक्षता हो जाएगी। हाँ जी, भक्ति करने के लिए आप नहीं पहुँचे कंपिल में, तो बोला तो यही गया है कि आत्मा असलियत तो यही है कि आत्मा एक शरीर छोड़ करके और दूसरे बाप के घर में जाके जन्म लेती, तो 9 महीने उसे गर्भ में पकना पड़ता है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है, बाद में वो बाप का बच्चा बनकर के पैदा होती है। तभी तो पैदा होती है, दूसरे बाप का बच्चा बनती है। यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी कोई दूसरी दुनिया याद नहीं है, और जब लौट के आते हैं भर के तो भी ज्ञानियों की बातें बुद्धि में रहती है, तो 9 दिन की भट्टी हो गई है ज्ञानियों की। उस 9 दिन की ज्ञानियों की भट्टी में बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है, और बाहर की दुनिया से जब कनेक्शन टूट जाता है तो उसके लिए नियम बनाए हुए कि वहाँ फोन भी नहीं कर सकते, बाहर चिट्ठी भी नहीं लिख सकते, क्या अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही रहना, अंदर ही पढ़ना, सब कुछ अंदर ही। हाँ, और बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता।
हाँ,
वो तो बरमूला कहेंगे दुनिया में माना जाता है। अमेरिका के पास, उत्तरी अमेरिका के पास एक सागर है, उस सागर में कोई जहाज, पानी के जहाज या आसमानी जहाज जाते हैं उसके ऊपर टूटते हुए तो डूब जाते हैं। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि वहां से होकर के नहीं गुजरना, रास्ता दूसरा बनाया हुआ है जहाजों का, पकड़ लेते तो वैज्ञानिक भी हार गए। वास्तव में वो भूत प्रेतों का क्या है क्या? वो तो दुनियावी तरीके से है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया का बड़मूला ट्रेंगल कौन सा है? बड़ा मूला ट्रेंगल, बड़ा मूला, बड़ी मूल माने जड़। झाड़ में जितनी भी जड़ें हैं उनमें सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? अरे 10 कर्म के 10 मुखिया हैं, उनमें बड़ी जड़ कौन सी है? बड़ी आधारभूत आत्मा कौन सी है? है? अरे आज सनातन देवी देवता धर्म में भी तो दो है, एक प्रजापिता और एक ब्रह्म। प्रजापिता तो बीज हो गया और आधार कौन हुआ? अरे ब्रह्मा आधार हुआ ना, आधार माने जड़। तो बड़ी मूल कौन सी हुई? मूल माने जड़, सबसे बड़ी जड़ कौन हुई? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा भूत प्रेतों में सबसे बड़ा भूत प्रेत है कि नहीं है? क्या चंद्रकांत जहाज है? चंद्रकांत वेदांत जहाज ही क्यों लोग? वो भी वहां जाने से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम पकड़ लिए जाए। क्या आया समझ में? नहीं आया? अरे बेसिक नॉलेज की दुनिया में जो रहने वाले ब्राह्मण हैं वो भी डरते हैं कि वहां अगर चले गए और कहीं ज्ञान में एडवांस ज्ञान वालों ने पकड़ लिया तो वही के वही रह जाए। तो बड़मूला ट्रेंगल हुआ ना, बड़मूला ट्रेंगल। आप कहाँ समझते हैं? एडवांस में जो बड़मूला ट्रेंगल है वो कौन सी जगह है जहाँ बड़मूला ट्रेंगल है? कंपिल है, वो बड़मूला ट्रेंगल हो गया। विनाश होगा और फिर मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं वापस चला जाऊँगा, आग लगे पूरी होगी फिर मैं यहाँ क्या करूँगा? स्थापना हो गई, विनाश हो गया, अरे वापस चले जाऊँ। हरी अच्छा, यज्ञ का जो बाप था वो यज्ञ के हाथ में था, वो चला गया कि रहा? वरिष्ठ शक्ति बाप में था, फिर आग लग करके पूरी हुई। यज्ञ के आग में जिस तक माला बनाते थे टूट जाती थी, टूट गई है माला, मोती बिखर गई और हीरो चमा जल गई। वहां तो वो स्कूल है, शहर का नाम है हीरो चमा। और ब्राह्मण की दुनिया में हीरो चमा कौन है? जो भी सूर्यवंशी बच्चे थे वो हीरो की चमा थी, वो जल गई। फिर बाप कहाँ रह करके क्या करेगा? बाप भी आ जाए। एडवांस पार्टी जब बने, दूसरा संगठन नई दुनिया बने तो फिर बनी जाए। तो वो तो हुई स्थूल बाप की बात, जो मनुष्य शक्ति का पिता है। तो जो मनुष्य शक्ति की लागू होती है वो सुप्रीम सोल के लिए भी बात लागू होती है कि वो भी जब नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो जाना रहकर के क्या करेगा? रहकर के क्या करेगा?
अजय साढ़े 4 लाख बैठती है, अजय योगी में बैठती है। ये कभी परम धाम क्या होता है? लेकिन क्या ये प्रजापिता की आत्मा अजय साढ़े 4 लाख आत्माएं बनती है? क्या परम धाम शरीर छोड़ करके नहीं जाती है?
शरीर छोड़ के जाती है थोड़े थोड़े समय के लिए, लेकिन वो शरीर जो है वो जो नीचे पड़ा हुआ है बर्फ में, वो थोड़े समय सुरक्षित रहेगा। جب تک وہ واپس آئے, مانے ان کا شریر سماپت نہیں ہوتا, وہ اس میں پرویش کرتے ہیں اور پرویش کرنے
کے
یہاں وسو مانا دھن سمپتی اور دیو مانا دینے والا, دھن سمپتی دینے اور دیو مانا دینے والا, دھن سمپتی دینے والی آتما کون ہوئی؟ رام کی آتما, یہ کرشن کی آتما, جو بھی سنگم بھی کرتا ہے اس کو دھن سمپتی دینے والا کون ہوا؟ ارے رام باپ والی آتما نے, اتوا جو کرشن سنگم بھی پرتیک ہوگا اس کو دھن سمپتی کہاں سے ملی؟ کتنے دی؟ شیو تو بندو ہے, اس کی کوئی بات ہی نہیں. رام والی آتما یا کرشن والی سنگم بھی کرشن والی آتما, اس کو دھن سمپتی کہاں سے ملی؟ یعنی کہ دھن سمپتی ملتی کہاں سے؟ شیو تو بندو ہے, پریکٹیکل کون ہے؟ کہاں سے ملی؟ برہما بابا سے ملی نا, تو برہما بابا اس کے لیے بسدیو ہوا نا, دھن سمپتی دینے والا ہوا, اور اس کی سہیوگنی کون ہوئی؟ جو جیل میں ہی ختم ہو گئی, جو دکھدائی دنیا ہے اس جیل میں ہی شریر چھوڑ دیا دونوں نے, سرسوتی اور برہما. ایک ہو گیا دیو کی دیوتاؤں کی اما, اور دوسرا ہو گیا وسودیو. ہاں اور آنند دینے والا نند بابا.